તારીખ 14/5/1992 શ્રી સમયસાર કળષ્ટિકા શ્લોક 30 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 21 મૂળ કેસેટમાં હમિંગનો અવાજ આવે છે.
શુદ્ધ ચિદગણ અહો નિજ રસ્મિ મોં મેરા કુછ નહીં હૈ મેં તો એક શુદ્ધ ચિદગણ અહો મેં તો એક શુદ્ધ ચિદગણ કા નિધિ હું એસા મત કિયા હૈ. દૃઢદ્રષ્ટિ સે અસંખ્યાત પ્રદેશો મેં स्वरस मैंने चैतन्य थे मैं संपूर्ण भरा हूँ. मेरा चैतन्य रस स्वसंवेदन रस मेरे प्रदेश प्रदेश में संपूर्ण भरा है अनंत भरा है. इसमें से ये बात एक न्याय निकाला है. बात तो अस्थि है अस्थि से है लेकिन एक अधिक न्याय निकाला है. न्याय वो निकाला कि कोई जानेगा कि जैन सिद्धांत का बार बार अभ्यास करने से दृढ़ प्रतीति होती है और उसका नाम अनुभव है सो ऐसा नहीं है. वो ऐसी भ्रांति हो जाती है कि जैन सिद्धांत का बार बार अध्ययन करे अभ्यास करे और अभ्यास करने से प्रतीति दृढ़ हो जाएगी. बार बार अभ्यास करने से दृढ़ता बढ़ जाएगी और दृढ़ता बढ़ जाने से अनुभव हो जाएगा. तो दृढ़ता कारण और अनुभव कार्य. और कोई तो ऐसा मानने लगते हैं कि हमने तो इतने साल तक जैन सिद्धांत का अभ्यास किया है और इतनी दृढ़ता हो गई है इसलिए हमको तो शंका है ही नहीं, इसलिए निशंक अंग वाला सम्यक दर्शन है. सम्यक दर्शन में निशंकता अंग होता है. हमको भी पूरी निशंकता आ गई है इसलिए हमको भी समकित्व है. सो ऐसा तो नहीं है. ऐसे जैन सिद्धांत बार बार पढ़ने से कोई दृढ़ता होने से अनुभव हो जाए ये कोई कार्य पद्धति नहीं है, ये विधि नहीं है. मिथ्यात्व कर्म का रसपाक मिटने पर द्रव्य कर्म से समझाया. भाव में दर्शन मोह का रस मिटने पर दोनों एक साथ होता है. इधर दर्शन मोह का रस भाव में घटता है तो मिथ्यात्व कर्म में भी रस घटता है. इधर रस घटता है तो इधर भी करता है. क्योंकि मिथ्यात्व जो कर्म है उसका उदय ऐसा है कि उसके उदय में किसी को मिथ्यात्व भाव नहीं हो ऐसा नहीं बनता. तो उपशम होता है तो रस मंद होकर के होता है. तो जैसे जैसे ज्ञान में यथार्थ आती है समझ में वैसे वैसे जो परमाणु मिथ्यात्व कर्म के सत्ता में है उसका रस है वो घट जाता है. तो उदय भी मंद रस से आता है. उदय मंद रस से आता है तो यहाँ भाव में भी दर्शन मोह मंद होता है. ऐसा साथ साथ बनता है. मिथ्यात्व कर्म का रसपाक मिटने पर मिथ्यात्व भाव रूप रस मिथ्यात्व भाव रूप परिणमन मिटता है. उपशम होने से मिथ्या भाव रूप परिणमन मिट जाता है. मिथ्यात्व परिणमन होता ही नहीं. तब वस्तु स्वरूप का प्रत्यक्ष रूप से आस्वाद आता है. मिथ्यात्व भाव रूप परिणमन नहीं रहता है तो वस्तु स्वरूप का भी प्रत्यक्ष रूप से आस्वाद आता है. देखिए यहां एक बात समझने लायक किया है कि जीव को सभी जीव को आबाल गोपाल को सभी जीव को अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा मैंने अपने ज्ञान में ज्ञान वेदंश अनुभवांश प्रत्यक्षांश है ज्ञान सामान्य में। अब इसका आस्वाद क्यों नहीं आता है? कि इसका आस्वाद इसलिए नहीं आता है कि मां मिथ्या दर्शन मोह का उपशम हुआ नहीं है। ज्ञान तो ज्ञान है लेकिन दर्शन मोह इसका आस्वाद को रोकता है या आवृत करता है, आवरण आता है उसका। क्या कहा फिर से कि मिथ्यात्व भाव रूप परिणमन मिटता है तब जब जीव को दर्शन मोह का उत्पादी नहीं हुआ भाव में। भाव में दर्शन मोह का उत्पाद नहीं हुआ तो उस वक्त क्या होगा कि वस्तु का जो स्वरूप आत्मा है अनंत प्रत्यक्ष, उसका प्रत्यक्ष रूप से आस्वाद आएगा, अनुभव आएगा। नानानुभूति सो आत्मानुभूति, आत्मानुभूति सो नानानुभूति, ऐसा होगा। उसका नाम अनुभव है, उसी का नाम अनुभव है या अनुभूति है, अनुभूति कहो या अनुभव कहो, एक ही बात है। और अनुभवशील जीव जैसे अनुभवता है वैसा कहते हैं। आगे अनुभवशील जीव है वो कैसा अनुभव करता है, या उसको आत्मभावना अनुभव सहित की आत्मभावना कैसी चलती है कि मम कश्चन मोहो नास्ति नास्ति। जितने विभाव रूप अशुद्ध परिणाम है जिसमें साथ चारित्र मोह का भी अंश है, जितने विभाव रूप शुद्ध परिणाम है वो सर्वथा नहीं है, नहीं है मेरा स्वरूप सर्वथा नहीं है, वो नास्ते की बात हुई। विभाव अंश अपने परिणाम में होते हुए भी, अशुद्ध अंश अपने परिणाम में होते हुए भी मेरा स्वरूप सर्वथा नहीं है, सर्वथा नहीं है, दो दफे बोला। भावना है ना, भावना तो बार बार आती है, सर्वथा नहीं है, सर्वथा नहीं है, ये मेरा स्वरूप नहीं है। राग आता है, होता है, आता है मतलब होता है अपने स्थान में, लेकिन मेरा स्वरूप नहीं है। मेरा स्वरूप प्रत्यक्ष रूप से ज्ञानमय प्रत्यक्ष पणे अनुभव रूप है, और जो मेरा अनुभव में आया हुआ मेरा स्वरूप है उसमें तो मोह का प्रवेश है ही नहीं। तो फिर जो अशुद्ध भाव है, मोह का अर्थ अशुद्ध भाव क्या है, देखो मोह मैंने जितने विभाव रूप अशुद्ध परिणाम, इसका मोह का अर्थ इतना किया है तो सही तो कहे, लेकिन मेरे स्वरूप नहीं है, न मैं करता हूँ न करवाता हूँ और न होता है उसको भला मानता हूँ, ठीक मानता हूँ, अच्छा मानता हूँ, ऐसा नहीं है। प्रत्यक्ष स्वरूप छे, स्वरूप अनुभव में प्रत्यक्ष है। जब अनुभव में स्वरूप प्रत्यक्ष है तो रागांश साथ साथ जो एक अंश परिणाम अंश में चलता है दोनों की जाति परस्पर विरुद्ध है। एक प्रकाश का पुंज है, एक बिल्कुल अंधेरा है, दाग है। दाग है सो हीरा नहीं, हीरा है सो दाग नहीं, सीधी बात है। जी जितना अंश है ना, तू तो एक शू अभाव थियो तो ત્યાં અભાવમાં શું છે કે ક્વોલિટી ફરક થાય છે, અભાવમાં શું થાય છે કે અનંતાનું મંદિર નથી. અનંતાનું મંદિર નથી એટલે રાગ હોવા છતાં રાગની ચિકાશ નથી. રાગ હોવા છતાં રાગની ચિકાશ નથી. તો રાગનો અભાવ થયો એનો શું કે અમુક પ્રકારનો રાગ ઉત્પન્ન થતો નથી. અમુક ક્વોલિટીનો રાગ ઉત્પન્ન થતો નથી એને રાગનો અભાવ કહેવામાં આવે છે. પછી પહેલી ચોકડીમાં એમ થાય છે, બીજી ચોકડીમાં તો કેટલાક પ્રકારના વિકલ્પનો જ અભાવ થાય છે. અપ્રત્યાખ્યાન વર્ણની છે તો એમાં જેટલી જેટલી પ્રતિમા આગમાં આગળ વધે છે ઉતની ઉતની સ્વભાવ સ્થિરતા બઢતી હૈ. ક્યા સ્વભાવ કી સ્થિરતા, સ્વભાવ મેં સ્થિર હોતે વિતરાગતા બઢતી હૈ. વિતરાગતા બઢતી હૈ તો ઉસી કે અનુપાત મેં જો રાગ હૈ જિસ પ્રતિમા કા જો રાગ હૈ વો રાગ ટૂટ જાતા હૈ બુદ્ધિપૂર્વક કા. એ બુદ્ધિપૂર્વક કી યોગ્યતા હૈ, બુદ્ધિપૂર્વક કા રાગ ઉત્પન્ન નહીં હોતા તો ઉસકો ભી અભાવ કહેતે હૈ. તો વહાં તો રિસર અમુક પ્રકાર કા બુદ્ધિપૂર્વક કા વિકલ્પ ભી જાતા હૈ. ચતુર્થ ગુણ સ્થાન મેં એસા નહીં હૈ, વો અવિરતિ ગુણ સ્થાન હૈ. ઇસલિયે જો સામાન્ય પ્રાણી કો જો ચાર ગતિ મેં રાગ હોતા હૈ ઉસ ઉસ ગતિ મેં ઉસી પ્રકાર કે પરિણામ ઉનકો હોતે હૈ. તો ઉનકો રાગ કા અભાવ દિખને મેં નહીં આતા. રાગ કા અભાવ ઇસકા દિખને મેં નહીં આતા ક્યુંકિ રોજ કી જો ઉદયિક ભાવ કી પરિસ્થિતિ થી બહાર મેં વો સંયોગ ભી એસે રહે, પરિણામ બિના ચિકાસ વાલે એસે રહે. પરિણામ એસે રહે લેકિન ચિકાસ ટૂટ ગઈ તો ચિકાસ તો કોઈ સમજે કોઈ નહીં સમજે. પરિણામ તો દિખે, પ્રવૃત્તિ ભી દિખે પરિણામ અનુસાર. ચિકાસ કો કોણ સમજે કે ચિકાસ હૈ કે નહીં હૈ, તો વો બાત સમજ મેં નહીં આતી. ચિકાસ ને ફરક પડે, જે ફરક પડે છે એ ચિકાસ નો ફરક પડે છે. જેમ કે ગ્રહસ્થી છે તો ગ્રહસ્થ ને યોગ્ય એને પોતાના પૂર્વકર્મ નો ઉદય હોય, કુટુંબ પરિવાર નોકરી વેપાર જે કઈ હોય તે, બહેનો હોય તો ઘરકામ હોય રસોઈ હોય જે હોય તે, તો એને તો પૂર્વકર્મ એ પ્રકારનું લઈને આવ્યો છે. એ પ્રકારના પરિણામ પણ જોવામાં આવે, અત્યારે આમ કરે છે પછી આમ કરે છે પછી આમ કર્યું આમ કર્યું, તો એ પરિણામમાં ભિન્નત્વ વર્તે છે. એ પરિણામથી પણ પોતાનું અનુભૂતિથી ભિન્નપણું વર્તે છે. એ કેવી રીતે ખબર પડે કોઈને? અને ભિન્નપણું વર્તે છે માટે ચિકાસ એમાં ઉત્પન્ન જ થઈ શકતી નથી. એમાં પોતે જોડાય તો જ ચિકાસ ઉત્પન્ન થાય, પોતે ભિન્ન રહે તો ચિકાસ થઈ જ ન શકે. એ તો વૈજ્ઞાનિક પરિસ્થિતિ છે. તો એને તો સમજે તે સમજે, ઓળખાણની વાત તો રસ્તામાં ચાલી. ન ઓળખે તો ન ઓળખે, ઓળખે તો ઓળખે, તો એ પોતાની યોગ્યતા ઉપર આધારિત છે. પંચમ ગુણ સ્થાનથી તો વિકલ્પ જ ખતમ થાય છે. જેને વિતરાગતા પૂર્વક દર્શન જ્ઞાન ચારિત્ર રૂપ મોક્ષ માર્ગ પંચમ ગુણ સ્થાન મેં વો આગે બઢતા હૈ તો ઉસકો જિસ જિસ પ્રતિમા મેં વો પ્રવેશ કરતા હૈ વહાં પ્રતિપક્ષ કા વિકલ્પ હૈ બુદ્ધિપૂર્વક કા ઉત્પન્ન નહીં હોતા ઉસકો અભાવ કહેતે હૈ. યહાં ક્વોલિટી બદલને કો અભાવ કહેતે હૈ, યહાં ઉત્પન્ન નહીં હોતે ઉસકો અભાવ કહેતે હૈ. છઠ્ઠે સૂત્ર સાતમે ગુણ સ્થાન મેં તો પ્રત્યાખ્યાન વર્ણિ કા ભી અભાવ હો ગયા. તો વહાં તો ગ્રહસ્થ લાયક કિસી ભી પ્રકાર કા વિકલ્પ નહીં હોતા, કોઈ આરંભ પરિગ્રહ કુછ નહીં, સબ ખતમ, સર્વ વીરતે મેં આ ગયા. ચિકાસ હિ નહીં હૈ તો અનર્ગલ કહાં સે હોગા? જબ ચિકાસ હિ નહીં તો અનર્ગલ કહાં સે હોગા? और मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, उसकी जागृति इतनी है तो उस जागृति में ही विभाव पर तो कंट्रोल हो गया। जैसे कोई मशीनरी में कंट्रोलिंग वाल होता है कि नहीं, कि कुछ भी आगे पीछे हो तो वाल है वो रास्ता बंद कर देता, क्या करता है रास्ता बंद हो जाता है। वैसे एक जागृति तो एक कंट्रोलिंग वाल है, आत्म जागृति में जो है उसको तो कंट्रोल बार जाने का सवाल ही नहीं रहता, वो तो जैसे घोड़ा का लगाम खींचता है वैसे वो समय ज्ञान खींच लेता है उसको बराबर पकड़ता है। यही कारण है इसका कि परिणाम होते ही देखिए सम्यक दृष्टि को अशुभ भाव होता है कि नहीं, वृत्ति गुण स्थान में होता है, फिर आयु क्यों नहीं बनता? कभी भी सम्यक दृष्टि को आयु और गोत्र दो अशुभ परिणाम के काल में नहीं बनेगा। अशाता वेद नहीं बन सकती है, अशाता नाम बन सकता है, अशुभ नाम कर्म बन सकता है, अशुभ वेदनी अशुभ वेदनी अशाता वेदनी बनती है, शुभ वेदनी शाता वेदनी है, लेकिन गोत्र और आयु अशाता के काल में बनने का नहीं सम्यक दर्शन के सद्भाव में। हाँ अशुभ अशुभ के काल में वो बनना अशुभ भाव होगा लेकिन उस काल में वो बंद नहीं होगा, नीच जाति में नहीं जाएगा सम्यक दर्शन के कारण और नीच आयु में नहीं जाएगा, अशुभ आयु में नहीं जाएगा, शुभ आयु नहीं बनता। तो ये कुदरत की व्यवस्था है, शुद्धि के साथ कुदरत भी बंधी हुई है, जैसे अशुद्धि के साथ कुदरत बंधी हुई है, पाप पुण्य का फल भोगना ही पड़ता है, वैसे शुद्धि के साथ भी कुदरत बंधी हुई है। नहीं आ गया तो उसी प्रकार का यहाँ शुद्धि का परिणाम है। अब देखिए शुद्ध आत्मा का बलवानपना कितना, शुद्ध स्वरूप का बल कितना, कि जो खराब खराब प्रकृति है वो प्रकृति कभी वहां उदय में नहीं है, बंध में भी नहीं आती। स्त्री वेद नहीं होता, नपुंसक वेद नहीं होता, त्रिंज मनुष्य का आयु गोत्र नहीं होता, ऐसे बहुत सी प्रकृतियां जो खराब है, क्योंकि इतने खराब परिणाम नहीं होते। सामने क्या बात है, परिणाम भी इतने खराब नहीं होते तो बंध भी इतने खराब नहीं होते, बस बात खत्म। प्रथम स्वानुभूति में बहुत ताकत है, स्वानुभूति में शुद्धात्मा में ताकत कितनी कि इनकी हवा आने से ही सारी दुनिया को हिलना पड़ता है। ये प्रकृति क्या है, सारी दुनिया है, ये प्रकृति क्या है, सारी दुनिया वही प्रकृति है, जबरदस्त चीज है। एक तीर्थंकर देव का जन्म होता है, तीन लोक में शाता के लहर आती है। अब क्या वो तो स्वभाव भी नहीं है, क्या जन्म होना स्वभाव है क्या, है स्वभाव नहीं है, पुण्य प्रकृति इसकी ऐसी है तो खुद को कितने साता होगी, इनकी माताजी को कितने साता होगी। सारी दुनिया को जब साता के लहर आती है, नारकी को एक दफे साता के लहर आ जाती है तो खुद को कितने साता होगी, इनके परिवार को कितने साता होगी। तो ये तो है वो जैसे सुख ये सुखड़ का जंगल होता है ना, है चंदन का, ये चंदन का जंगल के पास का जंगल में भी वास आती है इसकी। चंदन का जंगल में तो चंदन की वास आवे सुगंध आवे, वो कोई नई बात नहीं है, लेकिन पास वाले जंगल में भी चंदन की सुगंध आती है, नजदीक में कोई चंदन का जंगल है, ऐसा होता है। इतना पावरफुल चीज है, बहुत शक्ति है। उसका नाम अनुभव है। वस्तु स्वरूप का प्रत्यक्ष रूप से आस्वाद आता है, उसका नाम अनुभव है। और उसको अनुभव अपना लगता, शुद्ध भाव अपना अनुभव में आता नहीं है। जब ये जैसा है वैसा कहते हैं, वो नहीं है तो है कैसा? अब ये जैसा है वैसा कहते हैं, अस्थि से अब कहते हैं कि शुद्ध चिद घनम भव निधि अस्मि, समस्त विकल्पों से रहित, शुद्ध मैंने समस्त विकल्पों से रहित, चित मैंने चैतन्य, घन मैंने समूह, निवीड़ चैतन्य, विकल्पों से रहित चैतन्य घन, महा मैंने तेज उद्योत का, निधि मैंने समुद्र में हूँ, तेज का समुद्र उद्योत का समुद्र है, चैतन्य प्रकाश का मैं समुद्र हूँ, शुद्ध चैतन्य निर्विकल्प, समस्त विकल्प रहित मैंने निर्विकल्प चैतन्य का समूह रूप उद्योत का समुद्र में हूँ। घन भी कहा और निधि भी कहा, दो विशेषण लिया, ऐसा मैं हूँ। सूर्य में अंधेरे को ढूंढने जावे तो कहाँ मिलेगा? ये जो सूर्य है ना आकाश में दिखता है, उसमें कोई अंधेरा का खोज करे तो कहाँ मिलेगा? इससे भी चैतन्य का तेज ज्यादा है, घनिष्ठ है। ये सूर्य में जो प्रकाश है वो तो पुद्गल प्रकाश है, वो चैतन्य जो प्रकाश है वो सूर्य से भी अनंत गुण है, तो उसमें उतना तेज का नूर है कि कहीं भी राग का अंधेरा समीप भी आ सकता नहीं है, उसके समीप भी नहीं आ सकता अंधेरा, तो बहुत दूर रहना पड़ता है। ऐसा मैं हूं, देखो क्या अनुभव है। चैतन्य का उद्योत का समुद्र, समुद्र को भी तड़िया है, उसको तड़िया नहीं है, ऐसा समुद्र। भावार्थ इस प्रकार है, बाहर में दिखे तो आहा कर ले, ये अटलांटिक महासागर, पैसिफिक महासागर है ना, समुद्र से या टिम्बर में देखकर ओहो कितना पानी 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 पानी, सैकड़ों हजारों माइल तक पानी, तो आहा हो जावे। इधर तो इसका तो कोई भी किनारा है, नीचे भी कोई 5-6 माइल पर उसका तलिया है, इधर तो कहीं है नहीं, हद ही नहीं, कहीं लिमिट नहीं है, इतना तेज तेज का अंबार स्वयं ही है। दिखे तो खोया खोया रह गए, दिखे तो उसमें खो जाए, जैसे समुद्र में डूबते तो कहाँ पता चलता, ऐसे अपने चैतन्य सूर्य चैतन्य उद्योत के समुद्र में वो स्वयं है, तो फिर यहाँ से तो कोई दूसरी चीज देखने वाली नहीं है। ये कहते हैं ना कि भाई मुझे तो कुछ दिखता ही नहीं, पर दिखता नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ? कि एक प्रगाढ़ अनुभव है इसका, ज्ञान रस जिसमें भरा है, चैतन्य रस भरा है, उसकी प्रगाढ़ता के वश ये वचन शास्त्र में मुनियों को ज्ञानियों को निकला है, अपने अनुभव में से वो निकला है, वो बात नहीं है, पर प्रकाशकपणा नहीं है, वो बात नहीं है। वहां बात यह है कि मैं मेरे में इतना डूबा हूं कि मुझे और दूसरी चीज कहां से दिखे, दिखती नहीं है, दिखने पर भी नहीं दिखती है। क्या कहेंगे, दिखने पर भी नहीं दिखती है, बस मैं ही मैं दिखता हूं। ऐसा दूसरी चीज तो दिखने में नाश्ते करता है। क्या कहते हैं इधर, क्या किया पहले कि मम कश्चन मोह नास्ति नास्ति, अगर दूसरी चीज दिख गई, प्रतिभासित आ गई, तो उसका नकार आएगा। और अपने में तो भरपूर डूबा हुआ अपने रस से हूं, तो उसमें तो नास्ति करने के भी कोई विकल्प नहीं है। एक अस्ति की साइड में अपना रस से औतप्रोत हो जाता है, भावार्थ इस प्रकार है कि कोई जानेगा कि सर्व ही का नास्तिपना होता है, किसी को ऐसा लगेगा शून्य हो गया, कोई जानेगा कि सर्व का नास्तिक कर दे, इसलिए ऐसा कहे कि शुद्ध चित्र मात्र वस्तु प्रकट है, शून्य नहीं है। ऐसे नास्ति नास्ति सबके नास्ति किया तो शून्य हो गया, शून्यवादी, इसमें से शून्यवादी खड़ा हो गया, न इति न इति न इति न इति, जो भी है ना 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 देते हैं, तो कुछ नहीं, शून्य भीतर में कुछ नहीं है, शून्य है। और रजनीश का ये बात है, भीतर में कुछ नहीं है, शून्य है, भाई विकल्प से शून्य है, अशुद्धता से शून्य है, पर पदार्थ से शून्य है, लेकिन अपने तेज से तो, चैतन्य तेज से तो लबालब भरा हुआ है, बहुत भरा हुआ है, इसे अनंत चैचिद घन घन लिया है, आनंद घन, चैतन्य घन, एक एक गुण के पीछे घनिष्ठ बात लिया। इसलिए ऐसा कोई जानेगा कि सर्व का नास्तिपना होता है तो ऐसा नहीं है। खोलते जाते हैं राजमल जी, दूसरी दूसरी बात को खोलते जाते हैं, विपर्यास नहीं हो गए, यहाँ शास्त्र का विपर्यास नहीं हो गए, यहाँ शून्यवाद का विपर्यास नहीं हो गए, खोलते जाते हैं। इति सति सह सर्वै हि अन्य भावै हि विवेक स्वयं अयम उपयोगो विभ्रमाद आत्मानम एकम प्रकटित परमार्थे हि दर्शन ज्ञान व्रते हि कृत परिणति आत्मा राम एव प्रवृत। खंडान्वय सहित अर्थ 31 कलश एवं अयम उपयोग स्वयं प्रवृत, निश्चय से जो अनादि निधन है, निश्चय से जो अनादि निधन है, ऐसा यही जीव द्रव्य जैसा द्रव्य था वैसा शुद्ध पर्याय रूप प्रकट हुआ। निश्चय से जो अनादि निधन है ऐसा यही जीव द्रव्य, वो अनादि निधन है, कोई नया पैदा हुआ कभी नाश हो जाएगा बात है
नहीं,
नहीं। ध्रुव तत्व है ना, निश्चय से जो अनादि निधन है ऐसा यही उपयोग में ने जीव द्रव्य जैसा द्रव्य था वैसा शुद्ध पर्याय रूप प्रकट हुआ। उपयोग स्वयं प्रवृत, एक पर्याय नहीं लिया, उपयोग में सारा जीव द्रव्य लिया, ये जीव द्रव्य था जैसा वैसा अपने स्वरूप रूप प्रकट हो गया, अनुभव होने से अनुभूति में जैसा है वैसा प्रकट हुआ, प्रकट अनुभव में आया ऐसा कहो या प्रकट हुआ ऐसा कहो। भावार्थ इस प्रकार है कि जीव द्रव्य शक्ति रूप से तो शुद्ध था, क्या जीव द्रव्य शक्ति रूप से तो शुद्ध था, परंतु कर्म संयोग से अशुद्ध रूप परिणत हुआ था, कर्म के संयोग में जा करके, कर्म संयोग रूप मैंने क्या कर्म के संयोग में खुद जाकर के खुद ने प्रीति किया, कर्म संयोग के पर खुद ने प्रीति, ये मेरा संयोग है, बहुत अच्छा है। जैसे शरीर का संयोग होता है, ये मेरा शरीर है, मेरा शरीर मुझे अच्छा लगता है, मेरा शरीर अच्छा है, तो संयोग में खुद आत्मा जाता है, जाता है तो अशुद्धता होती है रागादि। शक्ति रूप से तो शुद्ध था, परंतु कर्म संयोग से अशुद्ध रूप परिणम परिणत हुआ था। अब वो हुआ था, आगे ऐसा किया था, अब अशुद्धपना के जाने से जैसा था वैसा हो गया, अब अशुद्धपना नहीं रहा, अब कर्म संयोग में मैं जाता नहीं, मैं मेरे में हूँ ऐसा मैं अनुभव करता हूँ, कर्म संयोग में मैं जाता नहीं, उससे भिन्नता रहती है। तो अशुद्धपना जाने से जैसा था वैसा हो गया, तो कैसा होने पर शुद्ध हुआ, वैसे भिन्नता कैसे हुई, शुद्ध कैसे हुआ, तो कहते हैं कि इति सर्वैः अन्य भावैः स्वविवेके सति पूर्वोक्त प्रकार होने पर वेद ज्ञान किया। कैसे शुद्धता आई कि विवेक किया, विवेक में क्या किया कि भिन्नपना किया, विवेक में क्या किया भिन्नपना किया, तो भिन्नपना क्या कहो के उसकी उसका हेयपना किया। उपादेय क्या किया कि अपना अनुभव हुआ वो उपादेय कर दिया, उपादेय का विकल्प इसका नाम उपादेय नहीं है, शुद्ध आत्मा उपादेय है ऐसा विकल्प वो कोई वास्तविक उपादेयपना की प्रक्रिया नहीं है। उपादेयपना की क्रिया कैसे होती है कि निर्विकल्प समाधि में लीन होते हैं तभी आत्मा उपादेय होता है। जब आत्मा उपादेय होता है तो आत्मा का निर्विकल्प आत्मरस है वो पीने में आता है, तब उपादेय हुआ। जब विकल्प हो तो विकल्प वाले परिस्थिति में विकल्प रहता है, लेकिन वो सही प्रक्रिया नहीं है, मैंने पर्याप्त प्रक्रिया नहीं है वो, यही उपाधि पड़ने के अधूरी अवस्था में ऐसे विकल्प आते हैं, और उस भाव की परिपक्वता में विकल्प हट जाते हैं और उपाधिता में अपना निर्विकल्प रस पीने में आता है, निर्विकल्प समाधि में। ये भाई पंकज भाई को ये प्रश्न बहुत था, राग द्वेष करना नहीं और हे उपाधि करते हैं तो राग द्वेष होता है, राग द्वेष करने की तो मना है, अब क्या करें, प्रश्न ये था। हे करने से राग द्वेष होता है, उपाधि करने से राग आता है, और राग द्वेष करने का तो निषेध है, वितरागता में तो राग द्वेष है नहीं, तो क्या हे उपाधि नहीं करें, यानी संभाव रखने से क्या कुदेव को और सुदेव को सही एक सरखा माने, संभाव में कुगुरु और सुगुरु को सम मैंने एक सरखा माने, सत्शास्त्र और कुशास्त्र को एक सरखा माने, मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि को एक सा माने, क्या कि इसका नाम संभाव
नहीं है,
ज्ञाता रहना उसका नाम संभाव है, इष्ट अनिष्ट बुद्धि नहीं होना उसका नाम संभाव है, बुद्धि बुद्धि में अभिप्राय, क्योंकि पदार्थ इष्ट अनिष्ट नहीं है, जो बाह्य है भिन्न है वो कैसे अनिष्ट हो सकता है और कैसे इष्ट हो सकता है, भिन्न है वो इष्ट और अनिष्ट हो ही नहीं सकता, और इष्ट अनिष्ट होता वो भिन्न रह नहीं सकता, और वो भिन्न पना जाना वही है ही पना है, अपने स्वरूप का एकत्व जाना और अनुभव किया वही उपादेय पना है, तो ऐसे संधि को मिलाना चाहिए, वरना विरोध भाषित होता है। तो विरोध जहाँ तक रहता है वहां तक समझ में ही विरोध रहे तो विकल्प शांत होने के कोई अवसर आता नहीं है, उसमें तो विछोड़ और उलझन बढ़ती है। परमात्मा प्रकाश में वही शैली दिया है, यही परमात्मा प्रकाश में यही चला है। निर्विकल्प समाधि के काल में आत्मा उपाधि है, ये बार बार लेते हैं। टीकाकार है यही परमात्मा प्रकाश में वो शैली अच्छा है, भावना का ग्रंथ है ना, इसलिए वो शैली चली है, भावना का ग्रंथ है। जैसे नियमसार भाव आत्म भावना का ग्रंथ है, वैसे परमात्म प्रकाश भी परमात्म निज परमात्म स्वरूप की भावना का ग्रंथ है वो। ये विवेक लिया, विवेक मैंने भिन्नपना होना इसका नाम विवेक है, विवेक मैंने द्वेष करे उसका नाम विवेक नहीं है। शास्त्र में तो हर तरह का कथन आएगा, नियम सार देखो भी आएगा कि तेरा कुटुंब कैसा है, कि धुतारा की टोली है, धुतारा देखे तो उसके ऊपर तो द्वेष आता है, तो क्या कुटुंब परिवार पर द्वेष करना, कथन तो अनेक प्रकार के आएंगे कि तू उसमें ममत्व करता है तो अपने आप तू अपने जाति को अपने स्वयं को वंचित वंचना बुद्धि में से प्रवर्तित करता है, तो तू छेतराता है तो आरोप उसको पर डालता है कि तू उसको ये छेतरता है। खुदीत को तो अच्छी तरह से बुलाते हैं, प्रेम से ममता से बुलाते हैं, वो ममता से बुलाते तुझे अच्छा लगता है तो वो तो तेरी गलती है, उसकी गलती उसके पास थी, उसकी गलती तेरे पास कहाँ है। तो खुद को भ्रमणा में नहीं आना है, वो बात है। तो बात कहने का तरीका बहुत है, सही बात नहीं लेवे तो द्वेष कर देवे, चलो छोड़ो उसको, ये सब मुझे परिभ्रमण कराने वाले हैं। ये कहाँ परिभ्रमण, परिभ्रमण कराने वाले तो तेरे परिणाम है, ये तो निमित्त मात्र है। जब तुम परिणाम बिगाड़े तो निमित्त मात्र है, वरना निमित्त मात्र भी नहीं है। तो वो भी अपेक्षित बात है, मर्यादित बात है। ऐसे भी काल होते हैं कि जहां सारे परिवार में सब धर्मी होवे, क्या एक परिवार में दो चार पांच आदमी सब सम्यक दृष्टि होवे, सब साधर्मी होवे और सब आत्म भावना में रहे, उसको दुतारा कैसे कहेंगे? दुतारा की टोली कहेंगे क्या उसको? वो तो सब समझदार है, ऐसा बनता तो आत्म मर्यादित सामान्य तौर से कही गई है संसार में जो होता है। तो विवेक का अर्थ ये है कि भिन्नपना रखना, जो भी द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म है उससे मैं शुद्ध चैतन्य हूँ, भिन्न मैं उससे भिन्न शुद्ध चैतन्य स्वरूप हूँ। भावार्थ इस प्रकार है कि जिस प्रकार सुवर्ण पत्र के पकाने पर काली माँ के चले जाने से सहज ही सुवर्ण मात्र रह जाता है, सोना शुद्ध करते हैं ना उसको अग्नि दे करके, तो मैल जल जाता है, मिट्टी जल जाती है, मिट्टी की राख हो जाती है, तांबा हो तो उसकी राख हो जावे, चांदी हो तो उसकी राख हो, लेकिन सोने की राख होती नहीं, उसका बर्निंग पॉइंट आगे का है, वो धातु मजबूत है इसलिए दूसरी धातु गल जाती है, ये शुद्ध सोना रह जाता है। ये स्वर्ण पत्थर होता है, खान खान में से निकालते हैं गर्म करें तो मिट्टी है उसकी राख हो जाती है और सोना हुआ रह जाता है एक गिलास सोना। तो काली माँ जब चले जाने से शुद्ध स्वर्ण मिलता है। ठीक उसी प्रकार मोराग द्वेष रूप विभाव परिणाम मात्र के चले जाने पर सहज ही शुद्ध चैतन्य मात्र रह जाता है। आत्मा में जो काली माँ थी राग द्वेष मोह की, वो नहीं रही तो शुद्ध चैतन्य रह गया। वो तो था ही, वो कोई बनाने की चीज नहीं है। कैसे राग द्वेष चला जाए छे, सम्यक दर्शन ने प्राप्ति थता राग द्वेष चला जाए, आत्मा रही जाए छे, आत्मा मयपणो रही जाए छे। एक सम्यक दर्शन ने लाइन पकड़े ने तो अंदर ने दुनिया बदलाई छे। सम्यक दर्शन ने बदलाय मा कई मोटी बात हती, ये तो आखी बात जुदी छे। पछी तो कैसे होती हुई जीव वस्तु प्रकट होती है, ये जो अनुभव हुआ तो कैसा परिणमन हुआ? अस्ति से एक आत्मानं विभ्रत, एक मैंने निर्भेद निर्विकल्प चिद्रूप वस्तु, ऐसा जो आत्म स्वभाव अपना स्वरूप, एक निर्विकल्प निर्भेद, गुण भेद नहीं, धर्म भेद नहीं, पर्याय भेद नहीं, उत्पाद भेद ध्रुव का भेद नहीं, द्रव गुण पर्याय का भी भेद नहीं। स्वभाव में कहां द्रव गुण पर्याय का भेद है? स्वभाव में कोई द्रव गुण पर्याय का भेद ऐसा निर्भेद निर्विकल चिद्रूप वस्तु, ऐसा जो आत्म स्वभाव उस रूप परिणत हुआ है, मैं ऐसा आत्म स्वभाव ऐसा अपने रूप परिणत हुआ है, ऐसा होता हुआ प्रकट होता है, प्रकट मैंने अनुभव में आता है। आत्म स्वभाव में निर्विकल्प निर्भेद चिद्रूप जो आत्म स्वभाव है उस रूप परिणत होता है, मैंने तन्मय होकर उस रूप परिणमत होता है, तद्रूप परिणमत होता है, तो स्वभाव प्रकट अनुभव में आता है, तो वस्तु प्रकट हुई ऐसा कहने में आता है। भावार्थ इस प्रकार है कि मिथ्यात्व परिणति का त्याग होने पर और शुद्ध स्वरूप का अनुभव होने पर बाकी मरे गया। हाँ ठीक है, और कैसा है आत्मा? और कैसा है आत्मा के दर्शन ज्ञान व्रत ही कृत परिणति है। दर्शन मैंने श्रद्धा रुचि और प्रतीति, श्रद्धा को रुचि भी कहते हैं और प्रतीति भी कहते हैं। ज्ञान मैंने जानपना या अनुभवपना स्वसंवेदन रूप, और व्रत ही मैंने शुद्ध परिणति राग रहित वितरागता शुद्ध परिणति चारित्र, ऐसा जो रत्न त्रय उस रूप से किया है परिणमन जिसने ऐसा है, तो अनुभव कर्म में क्या हुआ? एकला सम्यक दर्शन है उतना ही नहीं, एकला सम्यक ज्ञान है उतना भी नहीं, और चारित्र नहीं है सो भी नहीं है। दर्शन भी है, ज्ञान भी है, और चारित्र शुद्धता भी है। व्रत ही माथे काढ़ो शुद्ध परिणति, ऐसा जो रत्नत्रय उस रूप से किया है परिणमन जिसने ऐसा है। ये लोग नहीं मानते ना, दिगंबर संप्रदाय में नहीं मानते, बाहर तो कैसे मानेगा, दिगंबर संप्रदाय में नहीं मानता कि भाई सम्यक दृष्टि को चारित्र नहीं है, वो संयमी है। अविरत नाम ले ना गुणस्थान का, शास्त्र में और गुणस्थान का नाम अविरत दिया है, वो आगम पद्धति का एक संज्ञा है, नाम है। तो क्या असंयमी है? असंयमी असंयमी नवंदे ही यहाँ से निकालते हैं। तो इनको लिए कहते हैं कि नहीं शुद्ध परिणति ऐसा जो रत्नत्रय है उसके पास, तो उसका भावार्थ में स्पष्टता करते हैं कि क्या मुनि की बात नहीं लेते मिथ्यात्व परिणति का त्याग होने पर, नहीं तो ऐसा कह ये मुनियों की बात है, रत्नत्रय मैंने मुनिराज नहीं, ऐसी बात नहीं है। मिथ्यात्व परिणति का त्याग होने पर और शुद्ध स्वरूप का अनुभव होने पर, अस्ति नास्ति दोनों लिया, साक्षात रत्नत्रय घटित होता है, उसको तीनों होता है, सिर्फ सम्यक दर्शन होता है उतनी बात नहीं, उसको तीनों रत्न होता है, बहुत साफ कर दिया है। तो बार सातवें गुण स्थान में होता है शुद्धता, तो सातवें गुण स्थान में आती है, निर्विकलता सातवें गुण स्थान में होती है, हम तो पांचवें में है, अजीब शुल्लक किल्लक है, या तो हम तो मुनि है लेकिन छठे में है, निर्विकलता तो हमारी सातवें में आएगी, या तो कहेंगे छठे सातवें में तो है लेकिन निर्विकलता तो बारहवें में आती है, क्या है बचाव एस्केप गोता है क्यों फिर निर्विकलता है ऐसा बताओ तो कैसी है बताओ, तो वो तो अंधेरा है, उस निर्विकलता प्राप्त नहीं है तो उस विषय में तो अंधेरा है, और ऐसा कोई लिखने वाला हो तो ये पंडित का लिखा हुआ है, ये दर्शन ज्ञान व्रत ही वो कहा पंडित का लिखा हुआ है, प्रकटित परमार्थ ही दर्शन ज्ञान व्रत ही, ये तो अमृत चंद्राचार्य का लिखा हुआ है, तो मुनियों का मुनि के बारे में लिखा है क्या करे, सोनगढ़ से छपा हुआ है, चलो ये कलश सोनगढ़ से सोनगढ़ का लिखा हुआ है क्या, महाराज साहब तो कुछ लिखते नहीं थे क्या करे और अभी जो है उसमें कोई काष्ठा संघ वाले नहीं है, है? मूल संघी है सब ऐसा है आप लोगों को ज्यादा पता चले, दिगंबर हो गए उसको तो पता चले, कुंदाचार्य किस संघ के थे, मूल संघ के, तो कुंदाचार्य मूल संघ के थे, तो काष्ठा संघी मुनि ने उसका क्या की टीका किया है, उसकी टीका क्यों किया, तो एक दूसरे को नहीं माने ना, ये इनको नहीं माने तो उनको नहीं मानेगा, जैसे श्वेतांबर दिगंबर को नहीं मानता तो दिगंबर सितंबर को नहीं मानेगा, और कुंदाचार्य जो मूल संघी है तो अमृत चंद्राचार्य काष्ठा संघ वाले ने टीका क्यों किया, उसका सूत्र के प्रशंसा क्यों किया, आचार्य महाराज की प्रशंसा किया है, टीका किया है, इसका मतलब क्या है, प्रशंसा किया है, स्तुति किया है, बहुमाना है, जब तुम छठे सातवें गुण स्थान में विकल्प में इतना शास्त्र का स्थान दिया, कितना बहुमान किया, चक्रवर्ती आवे तो सामने नहीं देखे, हाँ वो तो क्या है कि अपना अभिप्राय के साथ मेल नहीं खावेंगे तो तीर्थंकर को भी उड़ाएगा, और यही धंधा इस जीव ने अभी तक किया है, दूसरे की क्या बात करें यही धंधा तो किया है कि हमारा अभिप्राय से अगर तीर्थंकर का अभिप्राय का मेल नहीं खाता है तो हमको वो भी मान्य नहीं है, जाओ जाते हैं तो कहते हैं कि भड़का दिख रहा बहादुर तीर्थंकर को भी उड़ाता है, ऐसी बात है, न्याय तो देखना नहीं है। ये समुद्र मंदिराचार्य कौन के कौन से संकेत मूल संकेत, तो उन्होंने ये कहा कि सम्यक दृष्टि अगर भंगी होता है क्या डेढ़ भंगी चमार, तो मैं क्या गणधर देव भी उसको देव कहते हैं, श्रीमद राजचंद्र देव, निहाल चंद्र देव, ऐसा देव लगता है इसके पीछे सब, क्या
देव लगता है
सबके पीछे, देव लगता है हाँ, गणधर देव उसको देव कहते हैं, तो सभी को देव कहना चाहिए देव कहना चाहिए क्या, क्योंकि गणधर देव उसको देव कहते हैं, आचार्य के मैं उसको देव कहता हूँ, फिर तुमको देव कहना चाहिए कि नहीं देना है, देव कहना चाहिए ये तो मूल संकेत थे कि नहीं थे, क्या भंगी को हम देव कहे है, जो भंगी है उसको हम देव कहे क्या, अरे त्रियंश को भी देव कहना है, भंगी को क्या, ऐसी बात है, भंगी तो स्नान भी करता है, त्रियंश स्नान नहीं भी करता है क्या, त्रियंश तो स्नान
नहीं,
नहीं भी करे, फिर देव है, देव है वो तो। हाँ करे छे, करे दृष्टि ने देव वंदन करे छे, बराबर इंद्र करे छे कि नहीं, तीर्थन कर देव चौथा गुण स्थान है, जहाँ जन्म थयो आसन हली गयो पुण्य बहु छे ने, तीर्थंकर देव ना पुण्य वधारे छे, तो अहीं जन्म थाय तो वहां आसन हिलता है उसका, तो उदिक ज्ञान में अरे मेरा आसन कौन वाला हिलाते हैं, ऐसा कौन है मेरे से ज्यादा पुण्य वाला, मेरा आसन हिलता है, अवधि ज्ञान में देख अरे जगत गुरु का जन्म हुआ, क्या हुआ अब तो बच्चा है, क्या बोलते हैं जगत गुरु का जन्म हुआ, अभी तो क्या जगत गुरु है अब तो बच्चा है, एक दिन का अपने आसन से उठता है, सम्यक दृष्टि देव देव वंदन करता है, मिथ्या दृष्टि देव तो वंदन करे ही करे, इसके नीचे वाला तो सब अनुचर है इसका, कितने असंख्यात 32 लाख विमान, एक विमान में असंख्य देव सब इसके अनुचर है, आज्ञा में रहने वाला तुंछे दबने वाला वो उठता है, मृत्यु लोक के दिशा में 3 कदम सिंहासन के ऊपर जाता है और वंदन करता है कथन योग भी नहीं पढ़ा क्या, कथानुयोग भी नहीं पढ़ा, जिसको कथानुयोग में स्थूल कथा की भी समझ नहीं है उसको द्रव्यानुयोग की समझ कहाँ से हो सकती है, तो हो सकती नहीं, ऐसी बात है, तीनों होते हैं मिथ्यात्व परिणति का त्याग, शुद्ध स्वरूप का अनुभव होने से साक्षात रत्न त्रय घटित होता है, कैसे हैं ये दर्शन ज्ञान चारित्र के प्रकट किया है, सकल कर्म क्षय लक्षण मोक्ष जिन्होंने ऐसे है प्रकटित परमार्थ है, इसका भावार्थ ऐसा है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, ऐसा कहना तो सर्व जैन सिद्धांत में है और यही प्रमाण है, उसका तो कोई निषेध कर सकता नहीं है, जैन नाम वाला जैन नामधारी भी उसका निषेध तो नहीं कर सकता, सर्व जैनों को प्रमाण है, तो ये तो मोक्ष मार्ग है, तो मोक्ष मार्ग है मोक्ष का अंश है, तो इसलिए उसने मोक्ष प्रकट किया है, और कैसा है शुद्ध जीव के आत्मा रामम आरामम आत्मा आरामम, आप ही है क्रीड़ावन जिसका ऐसा है, फिर तो ये घर के बगीचे में घूमते हैं कहीं बाहर जाते हैं नहीं, क्रीड़ावन क्रीड़ा करने का जिसके बगीचे में अच्छे अच्छे फूल पौधों पेड़ हैं फवारा है वो बाहर क्यों जाएगा खेलने के लिए, ऐसे रम्य स्थल तो और जगह सुंदर जगह है ही नहीं, भावार्थ इस प्रकार है कि चेतन द्रव अशुद्ध अवस्था रूप पर के साथ परिणमता था सो तो मिटा। पहले वो क्रीड़ा करता था किसके साथ, राग के साथ, मलिन भाव के साथ, मैल के साथ, गंदगी में भ्रमणता करता था। अभी सुंदर ऐसा, शुद्ध ऐसा, श्रद्धा ज्ञान चारित्र और आनंद में केली करने लगता है, शांति में रमणता करता है, पवित्र शांति में जो रमण करता है, इसके लिए उसको क्रीड़ा मन कहते हैं। तो वो तो मिटा। और सांप्रत मैंने वर्तमान काल में स्वरूप परिणमन मात्र, अशुद्ध परिणमन में वो अपना अस्तित्व रखता नहीं है, इसलिए स्वरूप परिणमन मात्र है।
भगवान जय परम पार्वती।